अध्याय सात। रामानंद और कबीर। रामानंद दक्षिण और उत्तर के भक्ति आंदोलनों के बीच एक पुल थे। उनकी जन्म तिथि और मृत्यु तिथि के संबंध में बहुत अनिश्चितता है। भंडारकर और गियर्शन के अनुसार उनका जन्म 1299 ईस्वी में हुआ था। मैकालीफ उन्हें 14वीं सदी के अंत और 15वीं सदी के पहले अर्धांश के बीच रखते हैं और फरकुहर उनसे सहमत हैं। नाभाजी कोई तिथि नहीं देते और अगस्त्य संहिता उनकी जन्म तिथि 1299 ईस्वी 1356 संवत बताते हैं और अग्रस्वामी द्वारा लिखित रहस्यमयी की एक टीका 1299 ईस्वी देती है। भंडारकर और ग्रियर्शन दोनों का मत है कि रामानंद रामानुज से चौथी आध्यात्मिक पीढ़ी में हुए, किंतु परंपरा इसका समर्थन नहीं करती। नाभा जी केवल यही कहते हैं, रामानुज संप्रदाय का अमर गौरव पृथ्वी पर व्याप्त था। देवाचार्य और हरियानंद दूसरे महान थे। उनके बाद राघवानंद हुए, जिन्होंने अपने भद्रों को बहुत आनंद प्रदान किया। उनके बाद रामानंद हुए, जिन्होंने संसार के आनंद के लिए अवतार लिया। यहाँ नाभाजी विशेष रूप से प्रसिद्ध उन कुछ संतों का उल्लेख करते हैं जो रामानंद के सीधे वंशज थे, किंतु वे उन सभी का नाम नहीं देते। सीताराम भगवान प्रसाद निश्चित रूप से कहते हैं कि वंश परंपरा में रामानंद 22वें थे और देवाचार्य रामानुज से 6वें थे। हरियानंद देवाचार्य से 15वें थे और रामानंद हरियानंद के बाद हुए। यदि रामानुज की निधन तिथि 1137 ईस्वी थी और रामानंद के पहले उनके बाद 20 आचार्य हुए, तब यह बहुत संभव है कि उनका जन्म 13वीं सदी में न होकर 14वीं सदी के अंत में हुआ था। उनकी निधन तिथि भी तय करना कठिन है। भंडारकर इसे 1411 ईस्वी, फरकुहर 1470 ईस्वी और संस्कृत टीका 1448 ईस्वी देते हैं। भंडारकर की तिथि स्पष्ट रूप से अस्वीकार्य है। यह उनकी जन्मतिथि और उनके शिष्यों की तिथि से मेल नहीं खाती। अग्रस्वामी की तिथियां उनका जीवन काल 50 साल का बताते हैं, लेकिन उनके शिष्यों की तिथियों के बारे में कोई कठिनाई प्रस्तुत नहीं करते। फरकुहर की तिथि सभी तथ्यों के अनुकूल बैठती है, किंतु यह पता नहीं चलता कि वह किन प्रमाणों पर आधारित है। हिंदी साहित्य के इतिहास के लेखक मिश्र बंधु विनोद स्पष्ट और स्पष्ट रूप से सुझाते हैं कि रामानंद 1456 ईस्वी के लगभग विद्यमान थे। काम चलाने के लिए यह माना जा सकता है कि उनका जीवन काल 14वीं सदी के अंतिम चतुर्थांश और 15वीं सदी के पहले अर्धांश में था। रामानंद का जन्म प्रयाग में एक कान्यकुब्ज परिवार में हुआ था। उनकी शिक्षा कुछ तो प्रयाग में हुई और कुछ बनारस में। उनके पहले गुरु एकेश्वरवादी विचारधारा के एवं वेदांती थे, किंतु बाद में वे राघवानंद के शिष्य हो गए जो रामानुजी संप्रदाय के थे। वे स्वतंत्र विचारों के थे। उन्होंने अपना दृष्टिकोण विस्तृत करने के लिए देश की यात्रा की और मैकालीफ के अनुसार यह निश्चित है कि रामानंद बनारस में विद्वान मुसलमानों के संपर्क में आए। उनके अनुभवों और चर्चाओं का परिणाम यह हुआ कि वे अपने संप्रदाय के सिद्धांतों के रास्ते पर चल सके। धार्मिक आस्था में उन्होंने विष्णु और उनकी सहचरी के स्थान पर राम की उपासना का प्रतिपादन किया और उन्होंने बिना किसी भेदभाव के चारों वर्णों को भक्ति के सिद्धांत की शिक्षा दी। उन्होंने रामानुज के नियमों को रद्द किया और अपने नए पंथ में सभी जातियों के शिष्य स्वीकार किए। ये शिष्य स्त्री और शिष्य थे। उनके जो 12 शिष्य प्रसिद्ध हुए उनके नाम थे अनंतनाद, कबीर, पीपा, भावानंद, सुरवा, सुरसुरा, पद्मावती, नरहरि, रैदास, धन्ना, सेना और सुरसुरा की पत्नी। रामानंद की शिक्षाओं ने धार्मिक चिंतन की दो विचारधाराओं को जन्म दिया, एक रूढ़िवादी और दूसरी प्रगतिशील। पहली विचारधारा प्राचीन आस्थाओं पर आधारित थी और इसमें सिद्धांतों तथा अनुष्ठानों में केवल किंचित ही बदलाव को स्वीकार किया जाता था, और दूसरी विचारधारा ने ज्यादा स्वतंत्र मार्ग अपनाया और ऐसा धर्म स्थापित करने की कोशिश की जो विभिन्न पंथों के लोगों, खासकर हिंदुओं, दूसरे वर्ग के महानतम संत थे, हिंदुओं तथा मुसलमानों को स्वीकार हो। पहले वर्ग के महानतम संत थे तुलसीदास और दूसरे वर्ग के महानतम संत थे कबीर। निश्चय ही ये दोनों मध्यकालीन भारत के अत्यंत महत्वपूर्ण व्यक्ति थे। राम भक्ति के गायक के रूप में तुलसीदास अतुलनीय हैं। उनमें गहन दर्शन और सघन किंतु स्वच्छ तथा नैतिकता पूर्ण भावुकता का सम्मिश्रण था। वे मानव हृदय के गहनतम स्थल में प्रवेश करते हैं, किंतु कभी भी उनके रहस्य को जन साधारण की दृष्टि से नहीं उजागर करते। फिर भी वे मनुष्य और प्रकृति के बदलते मनोभावों को जानते हैं और अपने प्रत्यक्ष और सादगी के कारण सभी को प्रकाशित प्रभावित करते हैं। अज्ञानी हो या विद्वान हो, वे अनिवार्य रूप से विनम्र हैं और इस कारण वे मानवीय हैं। वे अपनी भक्ति में पूरी तरह मग्न हैं और उनमें आत्मचेतना या आत्मबोध पूर्ण रूप से अनुपस्थित है। वे एक ऐसे निरंतर प्रवहमान पर्वतीय झरने के समान है जो शुद्ध मधुर जल से परिपूर्ण है और उन लोगों की प्यास बुझाता है जो संसार के दुखों के भार से थके हुए हैं। कबीर अलग प्रकार की प्रतिभा के धनी हैं। उन्होंने जीवन के रहस्यों को देखा है और एक अनिर्वचनीय प्रकाश से साक्षात्कार किया है। वे लोगों के लिए और समाज के लिए पारलौकिक जगत से एक नया संदेश लाते हैं। वे ऐसे भविष्य का सपना देखते हैं जिसमें निष्ठाहीनता, असत्य, बुराइयां, असमानताएं नहीं हो। वे ऐसे धर्म की शिक्षा देते हैं जो एकमात्र ऐसी बुनियाद पर टिका है जिस पर धर्म खड़ा हो सकता है, अर्थात व्यक्तिगत अनुभव। वे बिना किसी हिचक के रूढ़ी और सत्ता के आडंबरों को नकारते हैं, क्योंकि उनकी आत्मा धर्मों के झगड़ों और औपचारिक धर्मों के रिक्त आवरण की दयनीय स्थिति से त्रस्त थी। वे कोई ढोंग सहन नहीं करते और ईश्वर की खोज में वास्तविकता की मांग करते हैं। कबीर कोई पलायनवादी संत नहीं है जिसने निराशा में संसार त्याग दिया है, और न ही वे ऐसे आदर्शवादी हैं जो सभी बातों में अच्छाई देखते हैं। वे संसार की नैतिकता की लड़ाई में तलवार उठाना चाहते हैं और न्याय की विजय के लिए प्रबल आघात करना चाहते हैं। वे सभी विवेकपूर्ण व्यवहार के सभी अतिक्रमणों और मानव की गरिमा की सभी अवमाननाओं को कठोर झिड़की देने से नहीं डरते। वे शक्तिशाली चेतावनी देने वाले निर्भीक मार्गदर्शक, भारत के हिंदुओं और मुस्लिम समुदायों की एकता के महान पुरोधा और मानवता के धर्म के दूत थे, जिन्होंने यह शिक्षा दी कि ईश्वर ने स्वयं को मानव जाति में पूर्ण रूप से प्रकट किया। कबीर का जीवन अस्पष्टता से आच्छादित है। अलग अलग लेखक उनके जन्म और उनकी मृत्यु की अलग अलग तारीखें देते हैं। मेकालिफ के अनुसार उनका जन्म 1398 ईस्वी में हुआ था और इसे भंडारकर स्वीकार करते हैं, किंतु वेस्कार्ट के अनुसार उनका जन्म 1440 ईस्वी में हुआ था। फरकुहर, बंस और अन्य भी यही कहते हैं। हिंदी लेखक कुछ स्पष्ट मार्गदर्शन नहीं देते। संत बानी संग्रह के संपादक उनकी जन्मतिथि 1398 ईस्वी और मृत्यु तिथि 1518 ईस्वी देते हैं। सीताराम कृष्ण भगवान प्रसाद एक दोहे का उद्धरण देते हैं जो उनकी मृत्यु तिथि 1492 ईस्वी देता है और कहता है कि कबीर 101 साल तक जीवित रहे। अंतिम लेखक को छोड़कर ज्यादातर अन्य लेखक उनकी मृत्यु की तिथि 1518 मानने में सहमत है, किंतु 1492 के पहले 1518 को प्राथमिकता देने के लिए कोई उचित कारण नहीं है। यदि 1492 को उनकी मृत्यु तिथि स्वीकार किया जाता है और 1398 ईस्वी को उनकी जन्म तिथि मान लिया जाता है तो उनका जीवन 94 साल का होता है, जो असामान्य तो है पर असंभव नहीं, लेकिन वे तिथियां कबीर को रामानंद का समकालीन बना देती हैं और इस संबंध में उस परंपरा के विपरीत जाती हैं जिसके अनुसार रामानंद का शिष्य बनने के समय वे एकदम युवा थे। किसी भी माने में 1398 को कबीर की जन्मतिथि स्वीकार करना कठिन है। यदि दीक्षा के समय कबीर की आयु 18 साल की थी और यदि वे 3 या 4 साल के लिए उनके शिष्यत्व में रहे, जिसे इस तथ्य के कारण माना जा सकता है कि रामानंद कबीर की गाथा से जल्दी ही निकल जाते हैं और उनके विचारों के विकास पर उनकी केवल एक अस्पष्ट सी छाप बची रहती है, तो उनकी जन्मतिथि 1425 को मानना ठीक होगा। इसे यदि 1492 से घटा दिया जाए तो कबीर की आयु 66 साल की आती है, जो काफी उचित है, या यदि 1518 से घटाए तो 93 साल आती है। कबीर एक ब्राह्मण विधवा के बेटे थे जिसने उनकी शर्म अपनी शर्म छिपाने के लिए उन्हें बनारस के एक तालाब में के किनारे छोड़ दिया था। उन्हें नीरू नामक जुलाहे और उनकी पत्नी नीमा ने पाया और उन्होंने कबीर को पाला। कबीर ने अपने बचपन के साल अपने मुस्लिम माता पिता के घर में बिताए, जो बहुत गरीब थे और उन्हें नियमित शिक्षा देने में असमर्थ थे। वे अपने हाल पर ही छोड़ दिए गए थे। हाँ, उन्होंने अपने पिता के धंधे को जरूर सीख लिया। बनारस शहर हिंदू वातावरण से घिरा हुआ था और उत्सुक और जिज्ञासु मस्तिष्क वाले कबीर जल्दी ही हिंदू और मुस्लिम धर्मों से परिचित हो गए। ऐसा कहा जाता है कि बालक के रूप में भी उन्होंने पूर्वाग्रह से इतनी स्वतंत्रता प्रकट की कि हिंदू और मुस्लिम बच्चे उन्हें गलत समझ लेते थे और उन्हें प्रताड़ित करते थे। वे जल्दी ही गुरु की तलाश करने लगे और दबिस्तान मुहसिन फानी के अनुसार जिस समय वे एक आध्यात्मिक गुरु की तलाश में थे, वे श्रेष्ठतम मुसलमानों और हिंदुओं से मिले, किंतु वह नहीं पा सके जिसकी उन्हें तलाश थी। अंत में किसी ने उन्हें एक वृद्ध और प्रखर व्यक्ति ब्राह्मण रामानंद के बारे में बताया। इस प्रकार वे रामानंद के शिष्य बन गए। कबीर स्वयं कहते हैं, काशी में हम प्रकट भय रामानंद चिताए। उन्होंने हिंदू दर्शन और धर्म की दीक्षा दी। ऐसा लगता है कि वे अपने गुरु के साथ ज्यादा समय तक नहीं रहे, किंतु परंपरा कहती है कि वे जल्द ही एक स्थान से दूसरे स्थान का भ्रमण करने लगे और साधुओं और संतों से मिलने लगे। उन्होंने मुस्लिमों सूफियों को की संगति में काफी समय बिताया। इस पर वे रमैनी में कहते हैं, मानिकपुर कबीर वसेरी, मद्दति सुनी शेख तकित केरी, उजय सुनी जौनपुर थाना, झूसी सुनी पीरन कौनामा, 21 पीर लिखे तेठामा, खत्मा पढ़े पैगंबर नामा। अर्थात मानिकपुर कबीर का निवास स्थान था, जहां उन्होंने लंबे समय तक शेख तकी के उपदेशों को सुना। वहीं उन्होंने जौनपुर में सुना और झूसी में उन्होंने पीरों के नाम जाने। उस स्थान पर 21 पीरों के नाम लिखे हैं जो पैगंबर के नाम का खुतबा पढ़ते हैं। कबीर ने अपने गुरुओं से जो ज्ञान प्राप्त किया, वह सब मुंह के जरिए दिया गया था। यह लगभग निश्चित है कि उन्होंने किताबों का उपयोग करना कभी नहीं सीखा और ऐसा प्रतीत होता है कि फारसी या संस्कृत भाषाओं से उनका परिचय था। हालांकि वे सूफीवाद और हिंदू दर्शन के तकनीकी शब्दों का मुक्त रूप से उपयोग करते हैं, किंतु ईश्वर से प्रेम में डूबे हुए लोगों ने पढ़ाई और विद्वत्ता को कभी अपना लक्ष्य नहीं माना। कबीर का मस्तिष्क हिंदू और मुस्लिम परंपराओं तथा ज्ञान के सिद्धांतों में से इतना संतृप्त था कि वे सीखने को अंतिम लक्ष्य नहीं मानते थे। वे पराविद्या और मारिफत के खोजी थे और उन्हें इस बात का संतोष था कि उन्होंने इन्हें प्राप्त कर लिया है। इतिहास ने कबीर के एक पूर्ववर्ती बुद्ध के संघर्षों और उपलब्धियों का लेखा जोखा तो रखा है, किंतु कबीर के बारे में इतिहास एकदम मौन है। ऐसी स्थिति में कबीर के जीवन की विभिन्न घटनाओं का क्रमबद्ध विवरण देना असंभव है। जब उनके शिष्यत्व का काल समाप्त हो गया, वे एक गुरु के रूप में बनारस में बस गए। उनकी शिक्षाएं इतने स्वतंत्र प्रकार की थी कि हिंदू और मुस्लिम दोनों को उनसे बहुत आघात पहुंचा और उन्होंने उन तमाम तरीकों से उन्हें दबाने का प्रयास किया जिनका उपयोग पुरोहितवाद अपने निहित स्वार्थों के साथ युगों से कर रहा है। प्रारंभ में कड़वी और लंबी बहसें और छोटी प्रताड़नाओं का सामना करना पड़ा और जब वे असफल हुए तो सरकार की गुहार की गई। गाथा ने वास्तविक घटनाओं पर अद्भुत घटनाओं और चमत्कारिक मुक्ति का पर्दा डाल रखा है, किंतु यह तो संभव है कि सिकंदर लोदी ने कबीर की सच्चाई देखकर पंडितों और मौलवियों से उनकी रक्षा करने के लिए उन्हें अस्थायी रूप से निष्कासन का दंड दिया। कबीर की शिक्षाएं उस समय प्रचलित सूफी सिलसिलों से इतनी मिलती जुलती थी कि उसे यह नहीं लगा कि कबीर को कोई कठोर दंड दिया जाए। वे जल्दी ही बनारस लौटे और आगे उन्हें प्रताड़ित नहीं किया गया। दोनों समुदायों में उनके बहुत से अनुयायी हुए और उनकी प्रसिद्धि पूरे भारत में फैल गई। कबीर का निजी जीवन एक गृहस्थ का जीवन था। वे अतिवादी तपस्या और संसार से वैराग्य लेने में विश्वास नहीं करते थे। उन्होंने लोई नाम की लड़की से विवाह किया। उससे उनकी भेंट गंगा के तट पर एक विरागी की कुटी में हुई थी और उससे एक बेटा कमाल और एक बेटी कमाली हुई। वे कपड़े बुनने का अपना धंधा करते रहे और उनके चित्रों में उन्हें करघे के पास बैठे हुए शिष्यों को उपदेश देते हुए दिखाया गया है। उनके उपदेशों में कुछ श्रेष्ठ दृष्टांत उसी कला में दिए गए हैं जिसमें वे लगे थे और जिससे वे अपनी रोजी रोटी कमाते थे। संसार से उनकी विदा उनके विचित्र चरित्र के समान ही थी। जब उन्होंने अनुभव किया उनका अंत निकट आ रहा है तो उन्होंने उस काशी को छोड़ दिया जिसकी पवित्रता को इतना महान माना जाता था। ऐसा माना जाता था कि जिसकी मृत्यु काशी में होती थी उसे स्वर्ग मिलता था। वे मगहर चले गए जहां मृत्यु होने पर गधे का जन्म मिलने का की बात कही जाती थी। अज्ञानता से भरे अंधविश्वास के प्रति उनकी गहरी घृणा उनके कर्मठ जीवन का अंतिम कार्य था। ऐसा कहा जाता है कि उनकी मृत्यु पर हिंदुओं और मुस्लिमों में यह विवाद हुआ कि उनकी देह का अंतिम संस्कार किया जाए। मुस्लिम उन्हें दफनाना चाहते थे और हिंदू उनका अंतिम अग्नि संस्कार करना चाहते थे। यह विवाद महत्वपूर्ण है क्योंकि यह प्रकट करता है कि कबीर का धर्म इतना व्यापक और पक्षपातहीन था कि हिंदू और मुसलमान दोनों उन्हें अपना होने का दावा कर सकते थे। इससे यह भी प्रतीत होता है कि यद्यपि दोनों उनका सम्मान करते थे और उनकी प्रशंसा करते थे, फिर भी दोनों उनके संदेशों को सही तरीके से नहीं अपना सके। पर शिष्यों ने कहा, अपने स्वामी के प्रति विश्वासघात नहीं किया है। कबीर का संदेश क्या था? नाभाजी के शब्दों में, कबीर ने जाति भेद को मानने से या हिंदू दर्शन की छह विचारधाराओं की सत्ता को मानने से इनकार कर दिया। उन्होंने ब्राह्मणों द्वारा निश्चित किए गए जीवन के चार भागों को भी नहीं माना। उनका मानना था कि बिना भक्ति के जीवन कतई धार्मिक नहीं है और यदि भजन नहीं किया गया तो साधु वृत्ति उपवास और भिक्षादान का कोई मूल्य नहीं है। रामायणी शब्द और साखी के माध्यम से उन्होंने हिंदुओं और मुसलमानों दोनों को धार्मिक उपदेश दिए। किसी भी धर्म के लिए उनमें प्राथमिकता नहीं थी, किंतु उन्होंने ऐसे शिक्षा दी कि दोनों धर्मों के अनुयायियों ने उसे पसंद किया। उन्होंने अपने मन की बात निडर होकर कही और उन्होंने अपने श्रोताओं को प्रसन्न करना ही अपना लक्ष्य नहीं बनाया। कबीर का मिशन प्रेम के धर्म की शिक्षा देना था जो सभी जातियों और संप्रदायों को एक बनाए। उन्होंने हिंदू धर्म और इस्लाम के उन तत्वों को नकार दिया जो इस भावना के विरुद्ध थे और जो व्यक्ति के वास्तविक आध्यात्मिक कल्याण के लिए महत्व के नहीं थे। उन्होंने दोनों धर्मों से उनके सम्मान उन्होंने दोनों धर्मों से उनके समान तत्व और उन दोनों की समानताएं ली। उनके दार्शनिक विचारों, उनकी रूढ़ियों और कर्म कांड में उन्होंने समानांतर बातों को तलाशा। उन्होंने संस्कृत और फारसी शब्दावलियों का और रेखता तथा हिंदी भाषा दोनों बोलियों का उपयोग किया। उन्होंने धर्म की आंतरिकता को बहुत महत्वपूर्ण महत्व दिया और बिना पक्षपात के दोनों धर्मों की बाहरी औपचारिकताओं की निंदा की। उन्होंने दोनों धर्मों के बीच के बंटवारों को जानबूझकर त्याग कर त्यागा और मध्य के रास्ते की शिक्षा दी। हिंदू मुआ राम कहीं, मुसलमान खुदाए, काहे कबीर सो जीवता, दो के संग न जाए। अर्थात हिंदू मंदिर की शरण लेता है और मुसलमान मस्जिद की, किंतु कबीर ऐसी जगह जाता है जहां दोनों को जाना जाता है। कबीर कहते हैं, दोनों धर्म दो शाखाओं के समान हैं, जिनके बीच में एक अंकुर फूटता है। कबीर ने दोनों के रिवाजों को छोड़कर ज्यादा ऊंचा मार्ग अपनाया है। हिंदू कहूँ तो मैं नहीं, मुसलमान भी नहीं, पांच तत्व का पुतरा गैबी खेलई माही। अर्थात यदि तुम कहते हो कि मैं हिंदू हूँ तो वह सच नहीं है, और न मैं मुसलमान हूँ। मैं पांच तत्वों से बनी देह हूँ, जहाँ अज्ञात तत्व क्रीड़ा करता है। मक्का काशी हो गया है और राम रहीम हो गया है। कबीर अपने धर्म द्वितीय मिशन के प्रति सचेत थे और उनके जीवन और शिक्षाओं ने वह राह पकड़ी जो शियाओं और सूफी संप्रदाय के इमामों और शेखों के समान थी। मैं अविगत ईश्वर का सेवक हूँ और मैं भक्तों को बचाने के लिए आया हूँ। मैंने अपने मुंह से संसार को वह शिक्षा दी है जिस पर सच्ची मुद्रा अंकित है। मैं यहाँ इसलिए भेजा गया क्योंकि दुनिया कष्ट में थी, सभी जन्म और मृत्यु के बंधन में बंधे थे और किसी को स्थायी घर नहीं मिला था। परमात्मा ने प्रारंभ और अंत स्पष्ट रूप से दिखाने के लिए मुझे भेजा। श्रुति से संसार की रचना होने की चर्चा करने के बाद वे कहते हैं, तो ही पाछे हम आइया सत्य शब्द के हेतु, घर घर हम सब सो कहीं शब्द न सुने हमार। ते भव सागर डूबही लख चौरासी घर, मंगल उत्पत्ति आदि का सुनियो संत सुजान। कह कबीर गुरु जागृत समरथ का फुरमान। अर्थात सत्य शब्द के प्रसार के लिए उसके बाद में आया। मैंने घर घर इन शब्दों का उपदेश दिया। जो मेरी बात नहीं सुनेंगे वे 84 धाराओं के बीच में भवसागर में डूब जाएंगे। जागृत गुरु कबीर कहते हैं कि यह परमात्मा का आदेश है, और फिर जो मेरे उपदेश नहीं सुनेंगे वे यम के द्वार जाएंगे, किंतु जो मेरा उपदेश सुनेंगे वे मेरे घर आएंगे। उनके निकट के शिष्य धर्मदास कबीर को देवत्व देकर इस समानता को पूरी करते हैं। वे परमात्मा के अवतार हैं जो जगत में प्रकट हुए। कबीर की शिक्षाओं की अभिव्यक्ति को सूफी संतों और कवियों के रूप मिला था। हिंदी भाषा में उनका कोई पूर्वगामी नहीं था, और जिन एकमात्र प्रादर्शों का वे अनुगमन कर सकते थे वे मुस्लिम थे। उदाहरण के लिए फरीदुद्दीन अत्तार का पंडनामा। दोनों की कविताओं के शीर्षकों की तुलना से यह बात स्पष्ट हो जाती है। उन्होंने सूफियों की शिक्षाओं के साथ ही जलालुद्दीन रूमी और सादी की कविताओं को सुना होगा, क्योंकि उनकी रचनाओं में उनकी प्रतिध्वनि है। उदाहरण के लिए, जब तुम इस दुनिया में आए तो लोग हंसे किंतु रोए, तुम ऐसा आचरण मत करो कि तुम्हारी मृत्यु के बाद लोग तुम पर हंसे। यह सादी की प्रसिद्ध पंक्तियों का ही भाव है। और आगे वे कहते हैं, यह सदैव स्थिर सागर में बुलबुलों के समान है। बुलबुला वास्तव में सागर है, हालांकि देखने में लहरें सागर और दृश्य अलग हैं। ये जब वह उठता है तो बुलबुला है, किंतु समाहित होने में उसका लक्ष्य ईश्वर है। बुलबुला और सागर दोनों कबीर हैं और अन्य सब नाम निरर्थक हैं। ना ही धर्मी ना ही अधर्मी, ना मैं जतिन कामी हो, ना मैं कहता ना मैं सुनता, ना मैं सेवक स्वामी हो, ना मैं बंध ना मैं मुक्ता, ना मैं बिरत न रंगी हो, ना काहू से न्यारा हुआ, ना काहू के संगी हो, ना हम नरक लोक को जाते, ना हम सुर्ग सुधारे हो, सब ही कर्म हमारा किया, हम कर्मन तय न्यारा हो। अर्थात मैं धर्म का अनुयायी नहीं हूँ और न मैं विधर्मी हूँ, मैं न तो योगी हूँ और न कामना का भक्त हूँ, मैं न तो वक्ता हूँ और न श्रोता हूँ, मैं न तो सेवक हूँ और न स्वामी हूँ, न तो मैं बंधन में हूँ और न मुक्त हूँ, न ही मैं सांसारिक वासनाओं में रत हूँ, न तो मैं किसी से अलग हुआ और न मैं किसी का साथी हूँ, न तो मैं नर्क जाता हूँ और न स्वर्ग जाता हूँ, मैं सभी कर्मों का करता हूँ तथापि मैं उनसे भिन्न हूँ। जाइबो को जागा नहीं, रईबो कऊ नहीं ठौर, अर्थात जाने को जगह नहीं है और रहने के लिए ठिकाना नहीं है। वे बहुधा ईश्वर से व्यक्ति के संबंध को समुद्र और लहर के रूप में तुलना करते हैं और वे ब्रह्मांड और परमात्मा के अनिवार्य एकता को प्रकट करने के लिए इसी उपमा का प्रयोग करते हैं, जैसा कि जिली और अन्य मुस्लिम संतों ने किया है। पानी हीते हिम भया, हिम हुए गया विलाय, जो कुछ था सोई भया, यही तथ्य कहियो न जाए। अर्थात पानी से ही बर्फ बनता है और बर्फ पानी और भाप बनकर गायब हो जाता है, जो पहले था वही हो गया और यही हकीकत है। वे बहुधा मदिरा और प्रेम के प्याले, आशिक हबीब की और माशूक महबूब, गुलाब और बगीचे, मार्ग उसके मुकामों और उसकी कठिनाइयों की ओर, मुसाफिर और उसकी मंजिल की बात करते हैं। ये सभी उद्धरण सिद्ध करते हैं कि वे सूफी साहित्य के बहुत ऋणी थे, किंतु यदि उनकी रचनाओं में शब्दावलियां से के ज्यादा संयोग नहीं दिखते तो वे इस कारण नहीं है कि उनके विचारों से उनका परिचय कम था, बल्कि इस कारण है कि वे विद्वान व्यक्ति नहीं थे और इसलिए जबकि उन्होंने सिद्धांतों को तो आत्मसात कर लिया, किंतु वे फारसी पंक्तियों को पूरी तरह अपने मस्तिष्क में नहीं रख सके। तथापि बीजक के अनुवादक अहमद शाह को उनकी रचनाओं में 200 से ज्यादा अरबी और फारसी शब्द मिले और इन शब्दों के विश्लेषण से पता चलता है कि उनका मस्तिष्क सूफी सिद्धांतों से कितना ओतप्रोत था। कबीर पर मुस्लिम प्रभाव का मुख्य सबूत उनकी शिक्षाओं में है और उनकी तरफ ध्यान देना जरूरी है। कबीर अपने पीछे कई छंदों और कविताओं का विशाल भंडार छोड़ गए। उनकी रचनाएं मौखिक ही संवहित हुई। मसी कागज छुओ नहीं, कलम गहो नहीं हाथ, ऐसी स्थितियों में कई लोगों ने इस महान संत के शब्दों में अपने शब्द जोड़ दिए और इसलिए यह कहना कठिन है कि उनकी रचनाएं कहाँ तक उनकी शिक्षाओं का प्रतिनिधित्व करती हैं। बीजक का संकलन भागोदास और सुख निधान का संकलन सूरत गोपाल दास ने किया था। बनारस के कबीर चौरा में स्थित कबीर पंथियों के मुख्यालय में 21 पुस्तकों का संग्रह है, जिसे खास ग्रंथ कहा जाता है। पुस्तकों की सही सूची विल्सन द्वारा दी गई है, किंतु वेस्कार्ट ने कुछ को दोबारा गिनकर और कुछ आधुनिक संकलनों को मिलाकर उनकी संख्या 82 बताई है। कबीर ने संस्कृत की अपेक्षा भाषा का उपयोग करना पसंद किया, क्योंकि वे चाहते थे कि उनकी शिक्षाएं आम लोगों तक पहुंचे। विद्वानों की भाषा में लिखी गई कोई भी रचना कुछ ही लोगों तक पहुंच सकती है, लेकिन उन्होंने लीक से हटकर चलने के लिए दलील देने की जरूरत समझी और इसलिए कहा, संस्कृत कूप जल भाखा बहता नीर, अर्थात संस्कृत सचमुच कुएं का पानी है किंतु भाषा बहते हुए पानी के समान है। फिर भी उन्होंने भाषा के दोनों रूप अर्थात संस्कृत निष्ठ हिंदी और फारसी निष्ठ उर्दू का उपयोग किया और उनकी कुछ रचनाएं फारसी निष्ठ उर्दू में हैं, जैसे रेखता। कबीर एक व्यवस्थित दार्शनिक नहीं है बल्कि वे एक कवि और रहस्यवादी हैं और उनकी भाषा सदैव स्पष्ट नहीं रहती, इसलिए उनके विचारों का विश्लेषण करने में कुछ कठिनाई होती है, किंतु मुख्य दिशाएं स्पष्ट हैं। उनका केंद्रीय चिंतन ईश्वर है जिसे वे कई नामों से संबोधित करते हैं, राम हरि गोविंद ब्रह्म समर्थ साई सतपुरुष बेचून अल्लाह खुदा, किंतु उनका प्रिय संबोधन है साहिब। ईश्वर की उनकी अवधारणा अत्यंत सूक्ष्म है। उनके अनुसार ईश्वर भावातीत सर्वव्यापी अवैयक्तिक और व्यक्तिगत अनंत और सीमित सद्गुण है। सीमित सगुण और निर्गुण, सत और असत, अचेतन और चेतन, न प्रकट और न छिपा, न एक न अनेक, भीतर भी और बाहर भी है, तथापि सभी विरोधी बातों के ऊपर तथा परे है। ईश्वर के स्वभाव को समुचित रूप से अभिव्यक्त करने की इस कठिनाई के कारण ही वे कहते हैं, ऐसा लो तत ऐसा लो, मैं के ही विधि कथो गंभीर लो, कहे कबीरा सतगुरु दाया ते, बिरला सतपद पारसी लो। समग्र सत्य के पूर्ण परिदृश्य को एक क्षण में न पकड़ने की साधारण मानव चेतना की अक्षमता के कारण वे हताश नहीं होते, क्योंकि उनके मस्तिष्क ने एकत्व की स्थिति में साक्षात्कार के जरिए जब तब निश्चितता प्राप्त कर ली, जब उनकी व्यापक चेतना ने ऐसी दृष्टि से ईश्वर को तुम में और मुझ में और सभी चीजों में और उनके परे भी देखा, जिसमें तार्किक मतांतर एक दूसरे में समा गए और अनुभवातीत हो गए। जहम लोभ मोह के खम्ब दऊ मन रच्यों हैं हिंडोर, तह झूले जीव जहन जह कतहू नहीं थीर ठौर। चतुर झूले चतुरैया औ झूले राजा सेव, चंद सूर दऊ नीत झूले नाही पावई भेव। चौरासी लच्छहु जिन झूले झूले रवि ससिधय, कोटिन कल्प जुग बितिया आए न कबहू हाय। धरनी आकाश हूँ दऊ झूले पवन हूँ नीर, धरि देहि हरिष आपहू झूले लखहि संत कबीर। गत्यात्मक सत्यता की उनकी दृष्टि कम ही लोगों को समझ में आती है। उसे साधारण तर्क के प्रकाश से देखना असंभव है, क्योंकि विश्लेषणात्मक बुद्धि अलगाव का कारण है और ज्ञान के घर में घर तय दूरा। तथापि सामान्य व्यक्ति को अलग से आंशिक दृश्यावलोकन कराना जरूरी है और यह प्रदर्शित करना भी जरूरी है कि जिस परमानंद की स्थिति में सत्य का ज्ञान पूर्ण होता है, उसके लिए वे कितने अनुपयुक्त हैं और उनकी बौद्धिकता कितनी अपर्याप्त है। इससे यह बात स्पष्ट होती है कि क्यों कबीर कभी कभी ईश्वर को भावातीत कहते हैं। पारब्रह्म पुरुष परे से और भी परे रहता है, या वे उसे पाक धत कहते हैं तथा कभी सभी जीवों के जैसा कहते हैं। आप ही वृक्ष बीज अंकुरा, आप फूल फल छाया, आप ही सूर्य किरण प्रकाशा, आप ब्रह्म समाया। और यह भी कहते हैं कि वह हर हृदय में विद्यमान है, हर पात्र में उसकी छवि है, किंतु अधिकतर वे यह मानते हैं कि ईश्वर की प्रकृति और तत्व प्रकाश है, जिससे यह पता चलता है कि उन्होंने सूफियों से कितना लिया। समुद्र को भरने वाले एक नूर को देखो जो समग्र सृष्टि में फैला है और तुम्हारे नूर से सब भरे हैं, और प्रकाश ही आवरण है, प्रकाश ही आसन है, प्रकाश ही तकिया है। कबीर कहते हैं, कहत कबीर सुनो भाई साधो, सतगुरु नूर तमाम। अर्थात हे साधो सुनो, सच्चा गुरु यानी ईश्वर तो नूर है। कबीर इस बात के कई विवरण देते हैं कि ब्रह्मांड कैसे अस्तित्व में आया। उनके कुछ विवरण ब्रह्मांड की उत्पत्ति के प्राचीन हिंदू सिद्धांतों पर आधारित हैं और अन्य इस्लाम से लिए गए हैं। हिंदू सिद्धांतों से लिए जाने का एक उदाहरण पहली रमैनी में है, किंचित संशोधित एक उदाहरण दूसरी रमैनी में है, और एक पूर्णतः विकसित उदाहरण आदि मंगल में है। पहली रमैनी को इस प्रकार रखा जा सकता है, प्रारंभ में जीव था, आंतरिक प्रकाश से वह प्रकाशित था, फिर इच्छा प्रकट हुई जिसे गायत्री कहा गया। उस स्त्री ने ब्रह्म विष्णु और महेश को उत्पन्न किया। फिर ब्रह्म ने स्त्री से पूछा कि उसका पति कौन है और वह किसकी पत्नी है। उसने उत्तर दिया, तुम हम तुम और न कोई, तुम ही से पुरुष हमें तोरी जोई। बाप पूत की एकई नारी एकई माय बियाय, ऐसा पूत सपूत ने देखा जो बाप ही चिन्ह धाय। अर्थात तुम और हम और तुम बस दो ही हैं, तुम्हारे ही सदृश पुरुष है और हम ही तुम्हारी नारी हैं। संसार के सारे मनुष्य पिता और पुत्र के रूप में होते हैं। सारे मनुष्य की एक ही माता जाति से पैदा होते हैं। वास्तव में जीव मात्र पुरुष है और इच्छा नारी। ऐसा सपूत प्रायः देखने में नहीं आता जो प्रयत्न पूर्वक इच्छा नारी को पहचान ले। दूसरी रमैनी में ब्रह्मा की रचना के बाद वह एक अंडा उत्पन्न करके रचना का दूसरा चरण संपन्न करता है। अंडे से 14 क्षेत्र विकसित होते हैं और फिर ब्रह्मा विष्णु और महेश ब्रह्मांड पर शासन करते हैं। आदि मंगल में परमेश्वर में जो प्रारंभ में एकाकी का था, पहले श्रुति प्रकट होती है, उससे शब्द आता है और शब्द से 5 ब्राह्मण उत्पन्न होते हैं और 5 श्वास और उनसे संपूर्ण संसार। ये सांख्य प्रणाली के अनुसार है। पहली रमैनी जीली और बुद्रुद्दीन शहीद की वैसी ही धारणाओं से विचित्र समानता रखती है। कबीर और जीली का अर्थ संभवतः यह है कि जीव या रूह दैवी ज्ञान का लक्ष्य है। आत्मा के केंद्र के रूप में ईश्वर पिता है, तथापि ईश्वर ज्ञान का लक्ष्य हो जाता है और इसलिए आत्मा का पुत्र हो जाता है। तथा पवित्र रमैनी का विवरण की तुलना झीली की ब्रह्मांडकीय मिथक से की जा सकती है। कबीर और झीली एक ईश्वर से प्रारंभ करते हैं जो सृष्टि के पहले स्वयं था, फिर उसने विचारों के विचार या शब्द की रचना की। शब्द से ब्रह्म आता है जो एक अंडे की रचना करता है, जिससे 14 क्षेत्र विकसित होते हैं। अन्य स्थानों में कवि 9 मंडलों की योजना को फिर से कहने की कोशिश करते हैं, जिसके जरिए मुस्लिम दर्शन के अनुसार सर्जना विकसित होती है। पंजी मंगल 9 मंडलों और उनकी मुख्य शक्तियों की सूची देते हैं, किंतु ग्रहों या मंडलों के नामों का उल्लेख नहीं करते। कभी कभी वे सर्जना के बारे में न शब्दों में बताते हैं। आकाश में वह दरवाजे बंद करके ध्यान मग्न था, फिर उसने अपनी छवि देखी और फिर तीनों प्रसन्न हो गए। यह इब्न सीना के सिद्धांत की प्रतिध्वनि जैसा दिखता है। सिद्धांत दीपिका में 2 अन्य अनुमान मिलते हैं। एक में हर वस्तु पानी से रची गई है। सारा ब्रह्मांड पानी से बना है। पानी के तत्व से वह गुथा जाता है। 7 स्वर्ग और 14 क्षेत्र पानी से ही छन कर निकले हैं और उसी में घुल जाते हैं। 10 अवतार, पीर और पैगंबर सभी पानी से बने हैं। अन्य में सृजन को एक मशीनी प्रक्रिया के समान बताया गया है। कारीगर विचित्र शिल्पी है जिसने असंख्य चीजें बनाई हैं। आत्मा सृजना के पहले परमात्मा में थी। वह तब अस्तित्व में आई जब ईश्वर के प्रकाश ने उसे आलोकित किया। जिसकी रचना पहले हुई वह स्त्री सिद्धांत शब्द था, जिसकी संतान अलग अलग व्यक्ति थे। वह अंतर अवास्तविक है। मैं और तुम एक ही रक्त के हैं और एक ही जीवन है। कबीर ने व्यक्तिकता को स्वीकारा और फिर भी उन्होंने उस एकता को नहीं भुलाया जो उनके पीछे है, और इस प्रकार वे व्यक्तित्व के बारे में आणविक दृष्टि से बचे। वे कहते हैं, साधे यह तन ठाट तंबूरे का, एचत तार मरोरत खूंटी, निकसत राग हजूरे का, टूटे तार बिखरी गई खूंटी, हो गया धुरम धुरे का, कहे कबीर सुनो भाई साधो अगम पंथ कोई सूरे का। व्यक्ति की नियति, कबीर के अनुसार व्यक्ति की नियति ईश्वर के साथ अंततः एकाकार हो जाना है। उससे कम कोई भी चीज उपयुक्त नहीं है। उसे स्वर्ग भी संतुष्ट नहीं करेगा, क्योंकि जब लग मन ही बैकुंठ की आशा, तब लग नहीं हरि चरण निवासा। अर्थात जब तक तुम वैकुंठ की आशा लगाए रहोगे, तब तक तुम ईश्वर के चरणों में रहने से दूर रहोगे। और स्वर्ग और नरक केवल अज्ञानियों के लिए है, उनके लिए नहीं जो हरि को जानता है। लक्ष्य पाने के लिए गुरु चुनना अत्यंत आवश्यक है। कबीर के पंथ में गुरु की वही स्थिति है जो कभी अन्य सूफी सिलसिले में है। यदि यह सूफियों के लिए सच है कि उनमें ईश्वर की उपासना मनुष्य की उपासना के समान ही है, तो वह यहाँ की भी लागू है। क्योंकि कबीर कहते हैं, गुरु गोविंद तो एक है, अर्थात गुरु को गोविंद मानो, नहीं उससे भी ज्यादा। हरि रूठे तो ठौर है, गुरु रूठे नहीं ठौर। अर्थात ईश्वर रुष्ट हो जाए तो रास्ता है, किंतु यदि गुरु रुष्ट हो जाए तो कोई रास्ता नहीं है। और जैसे कि सूफी सिलसिलों में है, वैसा ही कबीर पंथ में है। सच्चा ध्यान या जिक्र गुरु के रूप का होता है। सच्ची पूजा गुरु के चरणों की होती है। सच्ची नौका गुरु का शब्द है जो तात्विक और अनुभव के रूप में सच्चा होता है। और सतगुरु सम कोई नहीं, 7 दीप नौखंड, 3 लोक न पाइए, अरु 21 ब्रह्मांड। अर्थात आप 7 द्वीप, 9 खंड, 3 लोक, 21 ब्रह्मांडों में सद्गुरु के समान हितकारी किसी को नहीं पाएंगे। इसलिए यह जरूरी है कि चयन में अधिक से अधिक बुद्धि का उपयोग किया जाए। गुरु सिकलीगर कीजिए, ज्ञान मसकला दे, शब्द छोलना छोली के चित दर्पण कर ले। अर्थात गुरु को सिक लीगर होना चाहिए जो मस्तिष्क को चमकाए और जो धब्बे दूर करके हृदय को दर्पण बना दे। यदि गुरु उपयुक्त नहीं है तो वैसा ही होगा कि अंधे अंध ठेल या दोनों कूप पड़ंत। अर्थात अंधे को यदि अंध राह बताएगा तो दोनों कुएं में गिर जाएंगे। जिनके कोई गुरु नहीं है उनके प्रयास निरर्थक हो जाएंगे। कहे कबीर गुरु बेमुखी, कबहू न पावे पार, और जो उसकी बाह नहीं थामेंगे वे प्रवाह में बह जाएंगे। गुरु भक्त को उस मार्ग पर ले जाता है जो आत्मा का अनुशासन है। अनुशासन का अंत है स्वयं में मरना, जिससे ईश्वर में आवास हो सके। तभी दुर्लभ संत है जो जीवित रहते हुए मर जाता है। तो संत के चिंतनशील जीवन के दो पहलू हैं। पहले उसे संसार की चीजों के लिए मृत हो जाना चाहिए और तृष्णा और कामना पर पूरा नियंत्रण स्थापित करना चाहिए। उसके मस्तिष्क को आत्मा का बंधन नहीं बने रहना चाहिए और उसका स्व को कई लोगों से संलग्न वेश्या नहीं बना रहना चाहिए। पहला कदम है ईश्वर पर पूर्ण विश्वास। उसका हृदय मोम के समान है, वह दयालु है, मेहरबान है और इसलिए जो उसकी शरण में जाता है वह कभी निराश नहीं होता। केवल हाथ में माला घुमाकर नहीं बल्कि मन का फेर कर लगातार उसका नाम जप कर तटस्थता से कष्ट या आनंद का अनुभव किए बिना मस्तिष्क की 5 बुरी प्रवृत्तियों का दमन करके क्रोध और अभिमान त्याग कर विनम्रता, दरिद्रता, धैर्य और अंतर प्राप्त करने से स्व मिट जाता है। कबीर के लिए स्व से मृत होने का अर्थ संसार से पूर्ण वैराग्य लेकर पर्वतों और वनों की शरण लेना नहीं है। संतों, जो अपने घर में आत्म विस्मृति लाता है, मैं उस आदमी को पसंद करता हूँ। योग और भोग घर में है, किसी को जंगल जाने के लिए घर नहीं छोड़ देना चाहिए। कबीर स्वयं घर में रहे और एक जुलाहे के रूप में काम करते रहे। स्व से मृत होने का अर्थ है अपनी इंद्रियों से निरंतर युद्धरत रहना। कबीर भक्तों से कहते हैं, पकड़ शमशेर संग्राम में पैसिए, देह पर जंत कर युद्ध भई, काम और क्रोध मद लोभ से जूझना, मचा घमसान तन खेत माही, सील और साच संतोष साही भये, नाम शमशेर तहां खूब बाजे। संघर्ष के अंत का वर्णन इस प्रकार किया गया है, दया राखी धर्म को पाले, जग सो रहे उदासी, अपना साजिए सबको जाने, ताही मिले अविनाशी, सह कुशब्द बाद को त्यागई, छाड़े गर्व गुमाना, सत्य नाम ताही को मिली है, कहे कबीर सुजाना। अनुशासन का अन्य पहलू है ईश्वर में जीना। भक्त को अनुभव करना चाहिए प्रेम वही है जो संपूर्ण जगत में व्याप्त है। उसे यह अनुभव होना चाहिए कि ईश्वर निकट है। मोको कहाँ ढूंढे बंदे, मैं तो तेरे पास में, ना मैं देवल, ना मैं मस्जिद, ना काबे कैलाश में, ना तो कौने क्रिया कर्म में, नहीं योग वैराग में, खोजी हुए तो तुरते मिली हूँ पल भर की तलाश में, कहे कबीर सुनो भाई साधो, सब स्यासो की श्वास में। उसे यह अनुभव करना चाहिए कि ईश्वर न तो हर है, न राम है, न कृष्ण है, वह सभी अवधारणाओं से परे है। वह देह या रूपहीन है, तथापि वह जीवों का अत्यंत अंतरंग है, वह रंगरेजवा है, संसार उसका चित्र है, वह महान खिलाड़ी है, ब्रह्मांड उसका खेल है, किंतु सबसे ऊपर वह पिता है, प्रेमी है और प्रीतम है। व्यक्ति को उसकी कामना पुत्र, प्रेमिका या प्रिया के समान करना चाहिए और उसे तब तक विश्राम नहीं करना चाहिए जब तक उसके साथ साथ वह एकाकार न हो जाए। यदि मुस्लिम संत ईश्वर को एक नाजुक स्त्री और साखी के रूप में और काले केश वाले और सुडोल गर्दन वाली तथा हिरण की आंख वाली और मोहक भंगिमाओं वाली महिलाओं के रूप में देखता है तो जो कि उसकी ईश्वर की अद्वितीय सुंदरता का प्रतीक है, तो कवि ईश्वर को एक पति के रूप में देखता है जिसके लिए पत्नी अपना घर, नाम और सम्मान छोड़कर रात में निकल जाती है, चाहे अंधेरा कितना भी घना हो, चाहे तूफान और वर्षा उसके रास्ते में कितनी ही बाधाएं पैदा करें। सूफी के समान वे अपने साथी पथिकों को आमंत्रित करते हैं कि वे प्रेम की मदिरा में मस्त हो जाएं और सांसारिक ज्ञान को त्याग दें। जो भक्त रहस्यमय एकता पाना चाहते हैं, उन्हें इस रास्ते पर दृढ़ता से आगे बढ़ाना चाहिए। वह यह तलवार की तीखी धार पर चलने जैसा है। कई निराशाएं आती हैं और भयानक बाधाएं भी आती हैं। वो नई बदरिया परिगव संझा, अगुआ भुला बन खंड मंझा, पिय अंते धन अंते रहई, चौपरी कामरी माथे गहई, फुलवा भारन ले सकई, कहे सखियन सो रोय, ज्यो ज्यो भीजे कामरी, त्यो त्यो भारी होए। अर्थात मनुष्य के हृदयाकाश में अज्ञान के बादल झुक आए हैं। धर्म संप्रदायों के अगुआ एवं गुरु धर्म शास्त्रों के जंगल में स्वयं भटक गए हैं। मनुष्य अज्ञानवश परमात्मा को अपनी आत्मा से अलग मानकर उसे जीवन भर बाहर खोजता रहता है और चार अवस्था वाले शरीर रूपी कंबल को ढोता रहता है। एक दिन शरीर बूढ़ा हो जाता है, तब उससे फूल का भार भी नहीं लिया जाता। तब मनुष्य परस्पर रोकर कहता है कि जैसे जैसे कंबल भीगता है, वैसे वैसे वह वजनदार होता है, अर्थात उत्तरोत्तर काया शिथिल होकर निर्बल होती जाती है और चलत चलत अति चरण पिराना, अर्थात चलते चलते पैरों में बहुत पीड़ा होने लगती है, अर्थात परमात्मा की तलाश में भटकते भटकते मनुष्य थक जाता है। कबीर साहब ने उन सभी हालों का वर्णन किया है जिनका वर्णन सूफी करते हैं। पछतावा, दुख, आशा, दुर्दशा, ईश्वर के जमाल के ध्यान में लगाव और ईश्वर से जलाल के प्रति भय, कहर, मेहर, विरह, मिलन, गैवत, हुदूर, हैरत, चिगुंगी, भरम विध्वंस, वे खुद में यात्रा को वैसा ही बताते हैं। मंसूर अल हल्लाज ने 10वीं सती में कहा था, वे कहते हैं कि नासूत से जुड़े कामों को त्याग कर भक्ति मलकूत के संसार को देखता है, उसके बाद जबरूत की दुनिया को भी छोड़कर वह लाहूत के दर्शन करता है, किंतु जब ये चारों पीछे छूट जाते हैं तब आहूत का आगमन होता है, जहां मृत्यु या विरह नहीं और जहां यम का प्रवेश नहीं होता। वे इनमें से हरेक शब्द का सही महत्व जानते हैं थे और इसे वे दो सारगर्भित पंक्तियों में स्पष्ट करते हैं। नासूत अंधेरा है, मलकूत जबरूत में नूर जलाल, लाहूत में नूर जमाल मिलता है और हाहूत में हक का निवास स्थान है। 10 मुकामी रेखता में कबीर अपने ही तरीके से मोहम्मद की मिराज की पूरी कहानी को दोहराते हैं, जैसा कि बाद की मुस्लिम परंपरा में विकसित किया गया था। यह जरूर है कि यह उस मार्ग का प्रतीक है जिसका अनुगमन संत वर्णनातीत लक्ष्य की ओर अपनी आंतरिक उड़ान में करते हैं, जैसे पतंगा प्रकाश की ओर जाता है। इस लक्ष्य का वर्णन कई सुंदर कविताओं में कबीर ने किया है। कबीर जिस रहस्यमय दुनिया की ऊंचाई तक जाते हैं, उसकी अवधारणा को प्रकट करने के लिए यहाँ केवल एक कविता को रविन्द्रनाथ ठाकुर के शब्दों में दिया जा सकता है। जन्म मरण जहाँ तारी परत है, होत आनंद तह गगन गाजई, उठत धनकार तह नाद अनहद घूरई, तिरलोक महल के प्रेम बाजई, चंद्र तपन कोटि दीप बरत है, तुर बाजई तहाँ संत झूलई, प्यार झनकार तह नूर बरसत रहई, पर पीवई तह भक्त झूलई। जन्म मरण विच देख अंतर नहीं, दक्ष और बाम यू एक आही, कहे कबीर या सेन गूंगा तई, वेद कतेप की गम नाही। इस दुखहीन क्षेत्र में ऋतुराज वसंत का राज है, वन खिल रहे हैं और वह मैं हूँ कि सुगंध हवा में तैर रही है। वहाँ ईश्वर स्वयं प्रकट होकर खड़ा है और अंत में लंबी और थकाने वाली खोज का लक्ष्य मिल जाता है। इस प्रकार कवि ने भारत का ध्यान सार्वजनिक मार्ग के धर्म की ओर मोड़ दिया। एक ऐसा मार्ग निर्मित किया गया जिस पर दोनों चल सकते थे। ऐसे धर्म का हिंदू और मुसलमान दोनों विरोध नहीं कर सकते थे। कबीर के मिशन का यह एक सृजनात्मक हिस्सा था, किंतु इसका एक विनाशकारी पहलू भी था। असल में प्राचीन पगडंडियों पर उगे हुए जंगल को साफ किए बिना नया मार्ग बनाना असंभव था। इसलिए कबीर ने बड़े साहस के साथ तीखी भाषा में उस बाह्य आडंबर की व्यवस्था पर आडंबर किया जिसने सत्य को धुंधला कर दिया था या जिसने भारतीय समुदाय को एक दूसरे से अलग कर दिया था। इसमें उन्होंने न हिंदुओं को बख्शा और न मुसलमानों को। उन्होंने हिंदुओं से वह सब त्यागने के लिए कहा जिसके बारे में गौतम बुद्ध के दिनों से हर सुधारक ने जोर दिया। अनुष्ठान, बलि, जादुई शक्तियों का प्रलोभन, जुबानी पूजा, मंत्रों को रटना, तीर्थ व्रत, मूर्ति पूजा, देवी देवता, ब्राह्मण की सत्ता, जाति भेद, अशुद्धियों और भोजन से संबंधी पूर्वग्रह, उन्होंने अवतार के सिद्धांत की खुलेपन आलोचना की। सृजनहार न ब्याही सीता, जल पाषाण नहीं बंधा, अर्थात सृजनहार ईश्वर ने राम बनकर सीता से विवाह किया और पत्थर से समुद्र पर पुल बनवाया, यह सब कहना गलत है। और कहा जाता है कि जगत का स्वामी निर्बल और बलवान में अंतर देखकर राम के रूप में आया, किंतु कबीर कहता है ऐसे राम के सामने जिसने जन्म लिया और जिसकी मृत्यु हुई, मैं अपना मस्तक नहीं झुका सकता। इसके अलावा जिन दशावतारों की लोग बात करते हैं उनसे मुझे कोई मतलब नहीं है, वे केवल उनके कर्मों के फल पा रहे हैं, रचयिता तो कोई और है। यह कठिन है कि देहांतर के सिद्धांत से कितने जुड़े हुए थे। ऐसे कई अंश हैं जिनसे ऐसा लगता है कि इन्होंने इसे नकारा है। जियरा ऐसा पाहुना मिले न दूजी बार, अर्थात जीव मानव शरीर में ऐसा अतिथि है जो लौट कर पुनः इसमें नहीं आएगा। और मानुष जन्म दुर्लभ है, बहुरी न दूजी बार, पक्का फल जो गिर पड़ा बहुरी ने ला गई डार, अर्थात मनुष्य का जन्म फिर से मिलना बड़ी कठिन है। पका फल जब डाल से टूट कर गिर जाता है तब वह फिर से लौट कर उसमें नहीं लगता, तथा सभी अपना अपना भार लेकर इस ओर से जाते हैं और दूसरी ओर से कोई लौटता नहीं जो कहानी बता पाए। ऐसे और भी अंश है जहाँ वे 84 योनियों और अबाध आवागमन के बारे में कहते हैं। ऐसा लगता है कि वे मृत्यु के भय को और जन्म और मरण की श्रृंखला को एक चेतावनी के रूप में लेते हैं जिससे मनुष्य दुराचरण के जीवन से विमुख हो। वे कर्म के सिद्धांत पर ज्यादा विस्तार से नहीं कहते जो कि अवैच्छिक रूप से देहांतर से जुड़ा हुआ है, और ऐसा लगता है कि उनका सारा ध्यान इसके बाद और भविष्य पर केंद्रित न होकर यहाँ और अब पर केंद्रित है। वे उनकी अनन्यता, पैगंबर और उसकी किताब पर उनका अंधविश्वास और अनुष्ठानों, हज, रोजा, नमाज, औलिया और पीरों और पैगंबरों की पूजा करने के आडंबर छोड़ने को कहते हैं। हिंदुओं और मुसलमानों दोनों से वे कहते हैं कि वे प्राणी मात्र का सम्मान करें और खून खराबे से दूर रहे। वे इन दोनों से कहते हैं कि जन्म और पद के घमंड को छोड़े, तपस्या और सांसारिकता की अतियों को छोड़े और जीवन को समर्पण भाव से ले। आंख न मूंदू, कान न रूंधू, काया कष्ट न धरू, खुले नैन मैं हंस हंस देखू, सुंदर रूप निहारू, कहू सो नाम सुनू सो सुमिरन, जो कहू जो कुछ करूं सो पूजा, गिरह उद्यान एक सम देखूं, भाव मिटाऊं दूजा, जहां जहां जाऊं सोई परिक्रमा, जो कहूं करूं सो सेवा, अर्थात मैं अपनी आंखें बंद नहीं करता और न मैं अपने कान बंद करता हूं, मैं अपने शरीर को कष्ट भी नहीं देता, मैं आंख खोलकर और मुस्कुराते हुए देखता हूं और उसकी हर तरफ उसकी सुंदरता देखता हूँ, जो कहता हूँ वह उसका नाम ही है और जो सुनता हूँ वह उसका स्मरण है, और मैं जो भी कुछ करता हूँ वह उसकी पूजा है। घर को और बगीचे को मैं संभाव से देखता हूँ और उनके दो होने का भाव नहीं रखता। जहाँ जहाँ मैं जाता हूँ वही ईश्वर की परिक्रमा है, और मैं जो भी कुछ करता हूँ वह उसकी सेवा है। वे बारंबार कहते हैं कि हिंदू और मुस्लिम एक हैं, वे एक ही ईश्वर की उपासना करते हैं, वे एक ही पिता की संतान हैं और वे एक ही खून से बने हैं। सभी रचे हुए पुरुष और स्त्रियां आपके रूप हैं। कबीर अल्लाह और राम का बेटा है, वह उसका गुरु और पीर है, और हिंदू तुरुक की एक राह है, सतगुरु सोई लखाए, कहीं कबीर सुनो हो संतो राम ने कहूं खुदाए। अर्थात हिंदुओं और मुसलमानों का एक ही असली रास्ता है और सतगुरु यही मार्ग बतलाता है। कबीर कहते हैं, हे संतो, अलग न कहीं राम है और न खुदा, और जो समझदार हैं उनका धर्म एक है, चाहे वे पंडित हों या शेख हों। स्वाभाविकतः उन्हें यह देखकर क्लेश होता है कि हिंदू कहते हैं राम हमारा, मुसलमान रहमाना, आपस में दो लड़े मरत हैं मरम न को उजाना। अर्थात हिंदू कहते हैं कि राम हमारा है और मुसलमान कहते हैं कि रहमान हमारा है, और इसे लेकर दोनों लड़ मर रहे हैं, पर सत्य क्या है इसे दोनों नहीं जानते। कबीर हिंदू धर्म और इस्लाम को निकट लाने वाले पहले व्यक्ति थे। दक्षिण के आचार्यों ने मुस्लिम तत्वों को आत्मसात कर लिया था, किंतु कबीर ऐसे पहले व्यक्ति थे जिन्होंने मध्य के धर्म की यानी मध्य मार्ग की घोषणा की, और उनकी आवाज को पूरे भारत में सुना गया और उसकी प्रतिध्वनि सैकड़ों स्थानों में सुनाई दी। उनके असंख्य हिंदू और मुस्लिम शिष्य थे और आज उनके पंथ में करोड़ों लोग हैं। बनारस के कबीर चौरा में वे हर साल एकत्र होते हैं और मगहर में मुस्लिम अनुयायी उनकी याद को ताजा करने के लिए एकत्र होते हैं, किंतु उनके अनुयायियों की संख्या कितनी है यह महत्वपूर्ण नहीं है। महत्वपूर्ण उनका वह प्रभाव है जो पंजाब, गुजरात और बंगाल तक फैला है और जो मुगल शासन के अंतर्गत फैलता रहा, जब तक कि एक बुद्धिमान शासक ने उसके मूल्य का ठीक आकलन करके उसे अपने राज्य का धर्म बनाने की कोशिश की। अकबर की दीन इलाही एक निरंकुश शासक की एकाकी सनक नहीं थी, बल्कि उन शक्तियों का अपरिहार्य परिणाम था जो भारत के हृदय में गहराई से उमड़ रही थी और कबीर जैसे व्यक्ति की शिक्षाओं में व्यक्त हो रही थी। परिस्थितियों ने उसे उस प्रयास को विफल कर दिया, किंतु विधाता उसी लक्ष्य की ओर अभी भी इंगित करता है।